ओम शांति। इंटरनेशनल योगा डे है आज 21 जून, जो देश भर में आज मना रहे हैं और विश्व में भी कुछ जगह पर आज इंटरनेशनल योगा डे मना रहे। आज हम योग सीखेंगे, है ना। थर्ड लेसन राजयोग का। वैसे तो जो दुनिया में योग समझते हैं वो एक्सरसाइज या हठ योग, वो केवल एक अंग है अष्टांग योग में। लेकिन योग का यथार्थ अर्थ क्या है, है ना। योग का यथार्थ अर्थ है मिलन, जोड़, कनेक्शन, है ना। वियोग का अर्थ है अलग हो जाना, बिछड़ना। तो दो चीजों का जब कनेक्शन होता है तो एनर्जी फ्लो होता है। वैसे सभी इंसान योगी हैं, क्योंकि कोई ना कोई निरंतर हम कोई ना कोई वस्तु या व्यक्ति को याद निरंतर करते हैं। तो उन चीजों के साथ या उन व्यक्तियों के साथ हमारा कनेक्शन, सूक्ष्म कनेक्शन जुड़ता है, मन का कनेक्शन जुड़ता है, है ना। क्योंकि मन का कनेक्शन जब जुड़ता है तो आप कई बार टेलीपैथी के बारे में सुना होगा, सोच रहे होंगे तो वो व्यक्ति सामने आ जाता है, किसी के बारे में सोच रहे होंगे तो उसी का फोन आ जाता है। तो वो कनेक्शन जुड़ जाता है जब हम किसी को याद करते हैं। एक है स्थूल चीजों का कनेक्शन और दूसरा है सूक्ष्म रूप से कनेक्शन। जब शुगर को, जब चीनी को दूध में मिलाते हैं, वो भी मिल जाते हैं दोनों, उसको बिछड़ना, उसको अलग होना मुश्किल हो जाता है ना। वो स्थूल चीजों का मिलन हो गया। या फिर दो वायर, जब इलेक्ट्रिक वायर को मिलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है ना। ये स्थूल चीज है, लेकिन सूक्ष्म है ये वाइब्रेशन, जो कनेक्शन है। लेकिन जब कोई हम इंसान को याद करते हैं या स्थूल चीजों को याद करते हैं, वहां एनर्जी हमारा एलिवेट नहीं होता, एनर्जी हमारा ऊंचा नहीं हो जाता, या फिर हम आत्माएं श्रेष्ठ नहीं बनते। डिपेंड होता है, अगर हम बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति को याद कर रहे हैं, कोई देवता हो, साधु संत हो, तो मेरे से एनर्जी लेवल जिनका ज्यादा है, तो उनको जब हम याद करते हैं तो उनके साथ कनेक्शन जोड़ने से शायद मेरे भी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाता है। लेकिन कोई भी ऐसे इंसान के साथ जिसकी एनर्जी ऑलरेडी डिप्लीटेड है, उनके साथ हमारा मेरा कनेक्शन जुड़ा तो मेरा भी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक कनेक्शन है। तो इस योग से हम श्रेष्ठ नहीं बन सकते। कनेक्शन जुड़ जाता है, लेकिन इस कनेक्शन से आत्मा सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकती। तो यहां किस प्रकार के योग की बात चल रही है, किसके साथ की, है ना। यहां इंसानों के साथ या वस्तुओं के साथ के कनेक्शन की बात नहीं है, यहां कनेक्शन है परमपिता परमात्मा के साथ। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल हमेशा बेहद है, श्रेष्ठ है, पवित्र है और शक्तिशाली है, है ना। हमेशा 24/7 वो निरंतर एक जैसे स्थिति या एक जैसे शक्ति के लेवल उनका मेंटेन होता है। इसके कारण से उनके साथ कनेक्शन जोड़ने की यहां बात हो रही है। यह उनके साथ परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने से क्या होगा, इस योग को राजयोग कहते हैं। राजयोग माना अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य करने की बात है। इस संसार में सबसे मुश्किल बात क्या है? इस संसार में सबसे मुश्किल बात, सबसे मुश्किल जो आपको लगता है करना, वो कौन सी बात है? कौन सा कर्म है सबसे मुश्किल? अपने ही मन को नियंत्रण में रखना। दूसरों को एडवाइस देना बहुत इजी है, कोई गलती कर देता है तो बोलना इजी है, तुमको ऐसा नहीं करना, ऐसा करना चाहिए, सजेशन देना, एडवाइस देना बुक। लेकिन खुद की बारी आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, ऐसा हुआ था तो इसलिए मैंने ऐसा किया, वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता है लेकिन उसने झूठ बोला ना तो इसलिए गुस्सा है। तो कुछ ना कुछ अपने कर्म के लिए कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं हम, दोष दूसरों पर डाल देते, उसने ऐसा किया ना तो इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, है ना। तो खुद के ही कर्मेंद्रियों को नियंत्रण करना इस संसार में सबसे चैलेंज बात है, सबसे मुश्किल बात है। जो देखना चाहे वही देखे, जो बोलना चाहे वही बोले, जो सुनना चाहे सुने, जो सोचना चाहे वही सोचे, ये नियंत्रण की बात है। अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य करना सिखाता है राजयोग। जब हम इस बात को सीख लिए ना, अपने ही कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में रखा, तो फिर और बातें बहुत सहज हो जाता है। परिस्थिति पर हम ब्लेम नहीं करेंगे या फिर हम मायूस नहीं होंगे। तो इसीलिए राजयोग द्वारा हम सर अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य करना सीख लेते हैं, है ना। तो फिर ये कनेक्शन कैसे जोड़े, कनेक्शन परमात्मा के साथ कैसे जोड़े? जैसे मैंने कहा कि वो जो वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर जब जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, ऊपर के इंसुलेशन को निकाल के फिर कॉपर वायर्स को जोड़ते हैं, तब वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, है ना। तो यहां भी ऐसे है, परमात्मा का कोई अपना देह नहीं है, कोई इंसुलेशन नहीं है, लेकिन मुझ आत्मा का तो देह है। तो परमात्मा को याद करने के लिए, वो तो कॉपर वायर है, उनके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है, तो मेरा इंसुलेशन मुझे निकालना होगा। माना कॉन्शियसनेस, जो देह भान का कॉन्शियसनेस है, उसको त्यागना होगा। माना अब तक जो हम सोचते आए हैं, मैं फलाना हूं, शरीर के आधार से मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करते आई हूं, मेरा जेंडर, मेरा देश, मेरा रिलीजन, मेरे क्वालिटीज, मेरे स्किल्स, जो भी है इनके साथ मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही हूं, वो है देह भान के आधार से अपने आप को आइडेंटिफाई करना। उसको त्याग करके अपने आप को क्या समझना है, अभी अपने आप को क्या समझना है, आत्मा। जो आत्मा हम समझ रहे हैं, कोई इमेजिनेशन नहीं है, वो रियलिटी है। जो अभी तक जो हम ब्रह्म में थे, इमेजिन करते थे, ब्रह्म में थे, वो है अपने आप को देह समझना, वो ब्रह्म है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच है कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि एक दिन तो इस इंसुलेशन को त्याग करना पड़ेगा परमानेंटली, है ना। ये मेरा टेम्पररी एड्रेस है, मुझे आत्मा का टेम्पररी एड्रेस है, एक दिन इस टेम्पररी एड्रेस को छोड़ना होगा, त्यागना होगा, ये रियलिटी है इस संसार की, है ना। जब इसको त्यागना होगा तो फिर हम समझते हैं वो आत्मा चली गई, वो आत्मा तो मैं हूं ना। तो जब शरीर छोड़ते हैं या छोड़ने का समय आता है या किसी ने शरीर छोड़ा, तब हमें ध्यान आता है, अरे ये आत्मा चली गई, है ना। उस समय तो याद आता है, लेकिन दिन भर जो कर्म में हमारा वो याद नहीं रहेगा। तो अभी ये अभ्यास करना है बार बार इस कॉन्शियसनेस में आने की कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूं, है ना। तो इसके आधार से फिर परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ता है। राजयोग का सिंपल विधि है अपने आप को आत्मा समझ, परमात्मा को प्रेम से याद करना, ये है राजयोग। सिंपल है, नहीं है मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन किस आधार से हम परमात्मा को के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले दो बातें इस सेशन में देखेंगे, आधार, किस आधार से हम परमात्मा को याद कर सकते हैं, और दूसरे है विधि, किस विधि से हम परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं। सबसे पहले आधार, हम कभी भी याद करते हैं तो किस आधार से हम याद करते हैं किसी को। योग को सिंप्लीफाई अगर करेंगे, याद ही है, परमात्मा को याद करना योग हो गया, है ना। योग सिंपल, ये योग याद है, है ना। हम इंसान, हम आत्माएं किन लोगों को याद करते हैं रास्ते में चलते? कोई भी अजनबी लोगों को तो हम याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका परिचय तो है ही नहीं, है ना, तो उनको याद नहीं करते। तो याद किन लोगों को करते हैं हम? सबसे पहली बात है जिनका परिचय है, परिचित होना चाहिए, उनको याद करते हैं। और दूसरी बात है जिनके साथ मेरा संबंध है उनको हम याद करते हैं, जिनके साथ संबंध ही नहीं है हम उनको याद नहीं कर सकते, मतलब कनेक्शन जुड़ेगा भी नहीं ना, वो तो अजनबी है हमारे लिए। बहुत सारे संबंधी हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास होते हैं। वो खास क्यों है, क्यों है? क्योंकि उनके साथ मेरा स्नेह ज्यादा है, प्यार ज्यादा है, या फिर मेरा वेवलेंथ सोचने का जो है वो वेवलेंथ मिलता है। तो तीसरा आधार है स्नेह, है ना। और चौथा आधार है प्राप्ति, जिनसे मुझे कुछ मिलना होगा ना, उनको हम बहुत याद करते हैं। तो ये चार आधार है जिनके आधार से हम याद करते। सबसे पहली बात है परिचय, दूसरा है संबंध, तीसरा है स्नेह, और चौथी है प्राप्ति। अभी इन बातों को परमात्मा के साथ अप्लाई करके देखते हैं। तो परमात्मा का परिचय है आपको, कहते हैं ना योग में बैठना बहुत मुश्किल है, वही 3 घंटे की मूवी देखना इजी लगता है, लेकिन परमात्मा को बैठकर याद करना, मूवी देखने से परमात्मा को याद करने से प्राप्ति ज्यादा होता है। मूवी देखने में तो ये केवल एंटरटेनमेंट है, परमात्मा को याद करने से प्राप्ति है, फिर भी वो मुश्किल क्यों लग रहा है? जहां प्राप्ति है फिर भी मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमात्मा को यथार्थ रूप से समझे नहीं है, है ना। तो परिचय होना बहुत जरूरी है। कल शाम के सेशन में परिचय मिला परमात्मा का? परिचय मिला, परमात्मा कौन है, परमात्मा कौन है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं लेकिन उनमें से कहते परमात्मा एक है. तो वो परमात्मा कौन है? ज्योति बिंदु स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम, है ना. सिंपल, जैसे आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है और गुणों में सागर है, शक्तियों में अथाह है, अनलिमिटेड है, बेहद है, है ना. आत्मा है वो परम आत्मा है, वो परिचय मिल गया कल. तो पहला स्टेप हो गया परिचय, और सेकंड स्टेप अभी संबंध, परमात्मा के साथ संबंध. कौन से संबंध जोड़े परमात्मा के साथ? वैसे तो आरती करते समय तो गाते ही है सब आप, मात पिता बंधु सखा स्वामी सब आप हैं. आरती करते समय तो गाते हैं लेकिन फिर दिन भर में हम भूल जाते हैं, फिर कहते हैं ये मेरा दोस्त है, ये मेरे खास है, ये है. इंसानों के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इंसानों के साथ तो कनेक्शन चाहिए ही, समाज में जब रहना है तो चाहिए ही. लेकिन आत्मा परमात्मा के साथ किस आधार से हम कनेक्शन जोड़ेंगे? आत्मा के आधार से. शरीर के मात पिता हर एक के अलग अलग है, हर एक को जो जन्म दिया है हर एक के मात पिता अलग अलग है, फिर भी सब मिलकर के कहते हैं आप मात पिता हैं परमात्मा को. परमात्मा मात पिता के इस आधार से हो गए, वो आत्मा के मात पिता है. ये जो मेरे शारीरिक मात पिता है, ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए. ये भी है लेकिन उन होते हुए वो भी है, वो है आत्मा के, ये है शरीर के, है ना. तो ये जब संबंध हम जोड़ते हैं, मात पिता बंधु सका टीचर सदगुरु सब संबंधों के साथ कहते हैं परमात्मा को याद करना चाहिए. लेकिन अभी तक जिस रीति से हम याद करते हैं, करते आए हैं भक्ति मार्ग में, वो उनको बोला परमात्मा के लिए कहा आप बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत ऊंच हो, लेकिन हम तो आपके चरणों के धूल है, हम पापी है, कल है, मतलब बहुत सारे पाप किया हुआ है, ऐसे वैसे गंदे हैं, तो ये सब कुछ बोलते आए हैं. जब परमात्मा को अति श्रेष्ठ कहा लेकिन अपने आप को बहुत नीचा समझा, तो फिर कनेक्शन जुड़ेगा, कनेक्शन जुड़ेगा. हाँ, ह्यूमिलिटी के आधार से नम्रता के लिए तो ठीक है बोल दिया, लेकिन फिर सचमुच उस रीति से कनेक्शन जोड़ नहीं जाए, वो कनेक्शन जुड़ता नहीं है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को नीच समझ रहे हैं, और परमात्मा है ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च, वो तो है ही, लेकिन अपने आप को नीच समझने के कारण से वो जो अधिकार परमात्मा के साथ होना चाहिए वो कनेक्शन जुड़ता नहीं है. जब भी आपके बच्चे, आपका बेटा या आपकी बेटी आकर के अगर आपको कहे कि मम्मी पापा आप तो बहुत अच्छे हो लेकिन मैं अच्छी नहीं हूं, मैंने बहुत पाप कर्म किया है, मैंने ऐसी हूं वैसी हूं, तो फिर आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा सुन करके? नहीं अच्छा लगेगा. आपको ये लगता है कि मेरे से भी मेरे बच्चे अच्छे हो, है ना, वो भावना रहती है. तो इसलिए थोड़ा अभी चेंज करना है. अभी क्या है, हम सभी आत्माएं किसके संतान है? किसके संतान है? परमात्मा के. परमात्मा के संतान होने के नाते मुझ आत्मा के ओरिजिनल गुण कौन से हैं? भले अभी बहुत सारे गलतियां की होगी इस जन्म में, बहुत सारे पाप कर्म किए होंगे, वो तो ठीक है, लेकिन ओरिजिनली मुझ आत्मा का ओरिजिनल गुण क्या है? आप आत्मा के ओरिजिनल गुण और शक्तियां क्या है? शुद्ध है, पवित्र है, शक्तिशाली है। वो डिप्लीट होता गया है, ठीक है, जन्म लेते लेते थोड़ा डिप्लीट होता जाएगा, लेकिन मुझ आत्मा का ओरिजिनल अति शक्तिशाली है, पवित्र है। जब मैं अपने आप को ओरिजिनल स्थिति में लेके जाती हूं, ओरिजिनल मैं क्या हूं वो समझती हूं, तो फिर धीरे धीरे मेरा कनेक्शन जुड़ना बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो मेरे पिता है, है ना, वो मेरे माँ है। मात पिता से क्या मिलता है? जो भक्ति मार्ग में हम मांगते आए हैं, हे भगवान मुझे शांति दे दो, मुझे या फिर स्थूल चीजों को भी मांगते आए हैं, मुझे नौकरी दिला दो, मेरा मार्क्स अच्छा करा दो, बच्चा दो, शादी करा दो, प्रमोशन दिला दो, बहुत सारी स्थूल चीजों को भी मांगते आए हैं। परमात्मा स्थूल चीजें देंगे? स्थूल चीजें देंगे, अपनी भावना के आधार से वो मिल जाएगा। जब सागर देने के लिए बैठे हैं तो मैं क्यों गागर ले रही हूं, मैं क्यों बूंद ले रही हूं, है ना? तो सागर क्या दे रहे हैं अभी? परमात्मा क्या दे रहे हैं? अथाह सुख शांति दे रहे, आत्मा को सशक्त बना रहे हैं, है ना? तो पिता के नाते भक्ति मार्ग में जिस रीति से याद कर रहे थे, मांगते हुए आए हैं, लेकिन अभी किस आधार से याद करना है? मांगना नहीं है, लेकिन उस स्मृति में स्थित होना है, मैं आत्मा कौन हूं, मैं आत्मा उस परमात्मा के संतान, परमात्मा शांति के सागर, मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूं। शांति चाहिए नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, है ना? ये से बहुत डिफरेंस आप अपने जीवन में देखेंगे। जैसे अगर आपके घर में गाड़ी होगी, कार होगा, जो ड्राइवर शॉफर होगा, तो ड्राइवर होते हैं तो फिर दिन भर वो ड्राइवर वो कार ड्राइव कर रहे हैं, और ड्राइवर को अगर पूछे कि भाई ये गाड़ी किसकी है, तो क्या कहेगा? मालिक की गाड़ी है। वो कभी ये नहीं कहेगा मेरी गाड़ी है, हमेशा कहेगा मालिक की गाड़ी है। अगर वही 5 साल का बच्चा है और वो बच्चे को पूछते हैं ये गाड़ी किसकी है, तो कहे मेरी गाड़ी है। उसको चलाना नहीं आता है, ड्राइव करना नहीं आता है, फिर भी कह रहा है कि मेरी गाड़ी है। वो किस आधार से कह रहा है? क्योंकि उसको पता है मेरे पापा का जो भी है, मम्मी पापा का जो भी है, वो मेरा है। या संबंध का डिफरेंस हो गया, जो ड्राइवर है वो नौकर है, बच्चा है वो अधिकारी है, राइट? तो अभी तक जो जोड़ते आए हैं परमात्मा से, मांगते आए हैं, वो कनेक्शन अधिकार वाला संबंध नहीं जुड़ा, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही मिलता आया, बूंद मिलता आया, लेकिन अभी वो कनेक्शन चेंज करना है। क्या करना है? वो मेरा पिता है, सारे संसार के लिए भले वो भगवान है, लेकिन मेरे लिए कौन है? वो अपने लिए कौन है? वो मेरे पिता है। जब वो कनेक्शन जुड़ता है, ऑटोमेटिकली मेरे पिता के पास जो भी है, मैं जाने अनजाने इसमें मैं उसके वर्से के अधिकारी हो गई, है ना? तो केवल स्मृति रखना है, याद रखना है, मैं आत्मा किसके संतान हूं। ऑटोमेटिकली वो एनर्जी अपने को अनुभव होता जाएगा। ये अप्लाई होता है हर संबंध के लिए। पिता से वर्षा मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है, पावर मिलती है, समाज में ना शक्ति मिलती है। वही माँ के माँ से वात्सल्य अफेक्शन प्रेम निस्वार्थ प्रेम, तो वो परमात्मा के साथ माँ का संबंध जोड़ते हुए वो निस्वार्थ स्नेह, और जैसे ही माँ के गोद में वो बच्चा चला जाता है वो निश्चिंत शांति से वो सो जाता है, उसको पता है कि मेरी मम्मी है मेरे देखभाल करने के लिए। ऐसे ही जब भी आप परेशान होते हैं, मुश्किलातों के सामना करते हैं, तो फिर कौन सी मम्मी के पास जाना है? परमात्मा, है ना? तो फिर आपको इतना सुकून मिलता है, वो जज नहीं करते। कोई भी जज कर सकते हैं आपको, ऐसा किया वैसा किया, कभी भी माँ अपने बच्चे को जज नहीं करती। कुछ भी गंदा करके आ जाए वो बच्चा, वो आते ही माँ क्या करती है, वो उसको सफाई करना धुलाई करना वो शुरू कर देती। हम कितने भी गलती किया लेकिन जाकर के माफी मांगा तो वो प्यार वो शक्ति वो मिलता जाएगा, फिर से वो आत्मा गिल्ट कॉन्शियसनेस से निकल के वो सशक्त बनती जाएगी। तो हर संबंध का अपना महत्व है, क्योंकि संबंध के साथ परमात्मा को जब याद करते हैं ना, तो इमोशंस जुड़े हुए हैं, फीलिंग्स जुड़ी हुई है। जब फीलिंग्स जुड़ जाती है ना, तो फिर वो परिवर्तन बहुत डीप लेवल में चला जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में देखते हैं ना, सभी संबंधी हैं, मम्मी पापा भी है, फ्रेंड्स भी है, सब होते हुए भी हर मेजॉरिटी लोग लोनली क्यों फील कर रहे हैं? लोनली क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जुड़ नहीं पा रहे, इमोशनल लेवल में वो कनेक्शन जुड़ नहीं पा रहा है, है ना? तो ऐसे तो फिर वो आत्मा, वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी, सुसाइडल टेंडेंसीज, बहुत सारे मानसिक रोगों के शिकार वो व्यक्ति बन जाता है, है ना? तो इसीलिए इमोशनली परमात्मा के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, और इमोशनली जुड़ने के लिए संबंध के द्वारा जुड़ना बहुत जरूरी है। जहां संबंध नहीं वहां इमोशंस नहीं हो सकता, संबंध इसीलिए जरूरी है। सर्व संबंधों से परमात्मा को याद करना बहुत जरूरी है। और तीसरा लेवल है, पहला लेवल हो गया परिचय, दूसरा लेवल हो गया संबंध, और तीसरा लेवल है किस आधार से परमात्मा के साथ जुड़ना है, स्नेह के आधार से, है ना? स्नेह, यहां कोई स्वार्थ नहीं है, केवल प्रेम के आधार से परमात्मा के साथ जब जुड़ते हैं वहां एकाग्रता होती है। जैसे एक पेपर है, पेपर को सूरज के नीचे रखेंगे, धूप में रखेंगे, सालों साल अगर रखेंगे तो भी वो जलता नहीं है, लेकिन उस पेपर के ऊपर कॉन्वेक्स लेंस अगर रख करके उसके फोकल पॉइंट पर उस पेपर को रखेंगे, कुछ ही मिनटों में वो सारे सूर्य की किरणें फोकस होकर के फोकल पॉइंट पर जब एकाग्र हो रहा है वहां पेपर रखते हैं, कुछ ही मिनटों में वो पेपर जल जाता है, है ना? तो ऐसे ही परमात्मा के साथ जब स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, वैसे फिर हम उस प्रेम में डूबे हुए होते हैं, तब एकाग्रता आती है। एकाग्रता जब नहीं है तब वो भस्म या जलना नहीं होता है। तो इसीलिए केवल संबंध ने संबंध जोड़ते जोड़ते उस परमात्मा से प्रेम जितना बढ़ता जाए, क्योंकि वो प्रेम का सागर है। क्यों वो प्रेम नहीं जुड़ता है परमात्मा के साथ? कहीं ना कहीं डर है, डर है, जो हम रीति रिवाज फॉलो करते आए हैं, हमारे पूर्वज जो रीति रिवाज फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो डर लगता है कभी कहीं परमात्मा मुझे श्राप ना दे दे, है ना। कभी परमात्मा श्राप दे सकते हैं? सोचने की बात, परमात्मा श्राप देंगे? डर लगता है कभी परमात्मा श्राप ना दे दे। श्राप देंगे कि नहीं देते परमात्मा, आप बताइए। तो जब नहीं दे, क्यों नहीं दे सकते श्राप? वो मेरे पिता है और वो तो प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है। दुख हरता सुख करता है, दुख को हरने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। और दूसरी बात, आपके बच्चे कितना भी क्रिमिनल एक्टिविटी किया हो, आप उनको श्राप देंगे? दर्द होता है, खराब लगता है, लेकिन कभी भी श्राप नहीं देंगे, इसने ऐसा किया ना तो ये भस्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी ना। कभी अपने माता पिता अपने बच्चों को श्राप नहीं देते हैं। जब इंसान ही अपने बच्चों को श्राप नहीं दे सकते, वो तो परमात्मा है, वो तो भगवान है, करुणा का सागर है, वो कभी भी श्राप नहीं दे सकते। हम श्रापित कैसे होंगे होते फिर? हम श्रापित खुद से होते हैं। जैसे भस्मासुर के ना, तो डांस करते करते उनको कहा कि अपने हाथ सिर पर रखो, तो खुद भस्म हो गए। तो खुद के कर्मों के आधार से हम किसी को दुख दिया, वो मेरा भस्म, वो जैसे मुझे श्राप मिलता है। दुख के वाइब्रेशंस, किसको दुख दिया, दुख के वाइब्रेशंस मुझे श्राप। वो भले श्राप दे या ना दे, लेकिन वो मेरे कारण से वो दुखी हो गए ना, तो फिर वो श्राप के रूप से मेरे जिंदगी में उसका प्रभाव जरूर रहेगा। परमात्मा कभी भी श्राप नहीं दे सकते। तो इसीलिए परमात्मा से कभी डरने की बात नहीं है, कभी डरने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, वो सर्वशक्तिमान जरूर है। अगर मेरे कुछ गलत किया है, उसका जो सजा है वो मिलेगा, लेकिन परमात्मा देने वाला नहीं है। लेकिन मेरा ही कर्मों के आधार से कुछ ना कुछ पनिशमेंट मुझे जरूर मिलेगा, लेकिन परमात्मा वो एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, जो दिया दुनिया को वो लौटकर मुझे वापस मिल जाता है। लेकिन परमात्मा दुख दे कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए परमात्मा से डरने की बात नहीं है, डर के आधार से परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं जोड़ना है। डर के आधार से कनेक्शन जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, वो वाइब्रेशंस ही अलग होंगे। तो वो जिस रीति से कनेक्शन जुड़ना चाहिए, वो जो बहुत ही डीप कनेक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है डर से। अगर आपके बच्चे आपसे डर रहे हैं, तो आप जहां आएंगे वो निकल जाएंगे, आप मुंह से जैसे आंखों के मतलब दृष्टि नहीं ले सकते, है ना, डर के कारण से। तो वो कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। ऐसे परमात्मा से हम डरेंगे तो भले हम पूजा पाठ सब कुछ करेंगे, लेकिन वो डीप कनेक्शन जो जुड़ना चाहिए वो नहीं जुड़ता। इसीलिए चेंज करना है प्रेम के आधार से परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना बहुत जरूरी है। और चौथा लेवल है प्राप्ति। वो स्नेह के किस आधार से हम बढ़ते, वो तो प्रेम संबंध है ही है, लेकिन प्राप्ति को भी देखें ना, परमात्मा से मुझे क्या मिल रहा है, है ना। जितने प्राप्ति की अनुभूति करते जाएंगे, उतना प्रेम बढ़ता जाएगा। और परमात्मा से हमें प्राप्ति क्या है, परमात्मा से प्राप्ति क्या है, क्या मिलता है परमात्मा से? ये जो हम मांगते हैं ना, बंगला दे दो, एक नहीं तो चार चार दे दो, ये तो मांगते हैं, तो वो सब मिलेगा, स्थूल चीज है, वो तो स्थूल चीज है। परमात्मा के पास तो अखुट खजाना है, शक्ति है, प्रेम है, ज्ञान है, शांति है, सर्व गुण और सर्व शक्तियों का भंडार है। जो स्थूल चीज नहीं है, सूक्ष्म है आत्मा की, है ना। तो जब हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते, इन सर्व शक्तियों को, गुणों को अनुभव करते हैं। लेकिन कई बार हम ये भी कह देते हैं ना, पत्ता पत्ता हिलाने वाला भगवान है, है ना, उसके डिसीशन के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा, ये राइट है? ये राइट है? ज्ञान सरोवर में कितने पत्ते हैं? गिना है। एक पेड़ में कितने पत्ते होते हैं? ज्ञान सरोवर में कितने पेड़ है, कितने पत्ते हैं? पूरे माउंट आबू में, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, पूरे विश्व में। और परमात्मा का काम है कि पत्ता, ये पत्ता इस तरफ जाओ, ये पत्ता तुम इस तरफ जाओ, तुम झड़ जाओ। परमात्मा का काम है, परमात्मा का काम है नहीं। एक अगर ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, और उस फैक्ट्री में बहुत सारे मशीन्स है, राइट। अगर कोई भी मशीन खराब होता है तो किसको बुलाते हैं? मैकेनिक को बुलाते। उस पर्टिकुलर मशीन के कुछ अलग मैकेनिक होते हैं, हर मशीन के अलग अलग होते हैं। उस पर्टिकुलर मशीन के जो मैकेनिक है उसको बुलाएंगे, उससे रिपेयर कराएंगे। अगर वो छोटे से मशीन खराब होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं बुलाते, राइट। मैनेजिंग डायरेक्टर का काम क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या काम क्या है? आराम से एसी वाले कमरे में बैठना और पॉलिसीज बनाना, मेन मेन डिसीशंस ले लेना, जो मेन मेजर डिसीशंस है, जो दूसरे कोई भी नहीं कर सकता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग डायरेक्टर का है, राइट। ऐसे ही पूरे संसार के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? परमात्मा है, है ना। तो उनका कर्तव्य क्या है? छोटी छोटी बातों को नहीं, उनका एक ही काम है, पतितों को पावन बनाना, दुख हरना और सुख देना। और वो इंटरफियर नहीं करते हैं। अगर मुझे नहीं चाहिए, वो इंटरफियर नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने जोड़ा उनके साथ, तो फिर मुझे मिलेगा। अगर मैं जुड़ूंगी नहीं, परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं जोड़ती, तो फिर वो मिलेगा भी नहीं, है ना। तो परमात्मा है, छोटी छोटी बातों को करने की बात नहीं। परमात्मा से प्राप्ति क्या है? सर्वोच्च प्राप्ति है। परमात्मा के अलावा कोई और दे नहीं सकता। तो इसलिए प्राप्ति को जब हम समझते हैं, उस आधार से परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ सकते। तो चार लेवल हो गया, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। इन चार आधार से हम परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ सकते हैं, है ना। और विधि क्या है? योग करने की विधि, मेडिटेशन करने की विधि क्या है? कनेक्शन सबसे सिंपल, जो जैसे मना विधि क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, अपने आप को आत्मा समझ करके, बॉडी कॉन्शियसनेस को त्याग करके, अपने आप को आत्मा अनुभव करके, वो फाउंडेशन है हमारा। अनुभव करके फिर परमात्मा के साथ कनेक्शन जब जोड़ते हैं, फिर वो कनेक्शन जुड़ जाता है। तो उसके लिए कुछ स्थूल विधि भी है। जैसे आप यहां देखा होगा कि जब भी मेडिटेशन करते हैं तो फिर कमेंट्री दिया जाता है, आप लोगों को क्या सोचना है, क्या ना, कमेंट्री दिया जाता है। ये कमेंट्री केवल बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि मेरा अपना हर एक का कनेक्शन परमात्मा के साथ पर्सनल होना चाहिए। वो कोई रटे रटाए जो प्रेयर्स होते हैं वैसा नहीं होना चाहिए. हाँ, बिगिनर्स के लिए केवल किस रीति से आप मना कर सकते हैं उसके लिए ये कॉमेंट्री दिया जाता है. और मेरा अपना कनेक्शन परमात्मा के साथ निराधार होना चाहिए, किसी के भी आधार से नहीं हो. हाँ, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये कॉमेंट्री जरूर दिया जाता है. और दूसरी बात, ये लाल लाइट यहाँ लगाते हैं जब मेडिटेशन करते हैं, तो लाल लाइट का भी मतलब ये भी बिगिनर्स के लिए, या संगठित रूप से जब हम योग करते हैं तो लाल लाइट लगाते हैं, ताकि फिर वो जैसे सूदिंग, जैसे कूल डाउन हो जाए और आत्मा के ऊपर फोकस करते हुए उस कंडीशन में आ जाए, उस अवेयरनेस में आ जाए, तो इसीलिए वो लाल लाइट दिया जाता है. और बैठने की विधि, कहीं भी बैठ सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं. कोई भी वो नहीं है कि आपको पट पर ही बैठना है, सुखासन में ही बैठना है, पद्मासन में ही बैठना है, वैसी बात नहीं है. हाँ, अगर आप बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है पट में बैठना, क्योंकि जब मेडिटेशन हॉल में जाते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं, तो वो भी वहां पे पट पे भी बैठते हैं. वो पट पे बैठ कोई किसी किसी को अच्छा लगता है बैठते, लेकिन कंपल्सरी नहीं है पट पे ही बैठ करके आप मेडिटेशन करना है. कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, आराम से बैठना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसे पोजीशन में बैठते हैं जहां बॉडी को तकलीफ हो रहा है. अगर आपके टांगों में दर्द है, अगर आपको कहा जाए कि आपको पद्मासन में बैठ करके मेडिटेशन करना चाहिए, पद्मासन तो बैठ तो जाएंगे लेकिन दर्द, टांगों में दर्द, तो फिर क्या होगा, बुद्धि वहां ही जाती रहेगी, वहां नहीं जाएगा, है ना. जहां जहां दर्द है वहां जाए, तो जितना आप कंफर्टेबल, बॉडी जहां का भी दर्द नहीं होना चाहिए, ताकि फिर बुद्धि वहां खींचे नहीं, उस रीति से बैठ करके अलर्ट हो करके, बैकबोन स्ट्रेट रख करके, क्योंकि बैकबोन जब स्ट्रेट रखते हैं तो अलर्ट होंगे, नहीं तो फिर जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो रिलैक्स होने के कारण से फिर निद्रा लोक में चले जाते हैं. फिर पूछते हैं कि कैसा रहा मेडिटेशन, तो कहेंगे बहुत अच्छा रहा, बहुत शांति रही. वो शांति मेडिटेशन की शांति नहीं था, वो तो नींद की शांति थी, है ना. तो उस लेवल में शिफ्ट नहीं होना है, तो इसीलिए बैकबोन स्ट्रेट रख करके फिर आप कर सकते हैं. और आंख, यहां ओपन आई मेडिटेशन कहते हैं हम, आंखों को खुला रख करके फिर मेडिटेशन करना है, ओपन आई मेडिटेशन. ओपन आई माना पूरी तरह आंखों को खोलना नहीं है, हाफ क्लोज्ड. जैसे कोई भी योगियों के चित्र को देखा होगा, महात्मा बुद्ध हो या फिर महावीर जी हो या विवेकानंद जी, जो भी योगी है वो जो योग की पोजीशन में बैठते हैं, तो उनको देखा होगा कि आंख हाफ ओपन है. हाफ ओपन माना ध्यान है, इन सभी चीजों को देखते हुए भी मेरा ध्यान वहां नहीं है, पूरा ध्यान अंदर के तरफ है. मतलब देख दिखाई दे रहा है लेकिन ध्यान अंदर है. हर एक ये कर सकते हैं, हर एक ने कभी ना कभी किया ही है. जैसे आप किसी के प्यार में डूबे हुए हैं, या कोई बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हैं, कोई आया आपके कमरे में चला भी गया, आपका ध्यान नहीं रहा, ऐसा हुआ होगा ना आपके लाइफ में भी, आया भी गया भी, और फिर आकर के पूछा मैं तो आया था आपके कमरे में. अच्छा, आए थे क्या, दिखाई, आंख खुला है, देख रहे हैं, लेकिन रजिस्टर नहीं हुआ. रजिस्टर क्यों नहीं हुआ, याद क्यों नहीं रहा, आंख बंद नहीं था, आंख खोल के रखे थे, लेकिन आए गए तो, लेकिन रजिस्टर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अंदर इतने बिजी थे, कोई सोच में, गहरी सोच में वो डूबे हुए थे, तो वो रजिस्टर नहीं हुआ, है ना. तो ये स्थिति हमारा ले आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कर्म करते हैं, क्योंकि राजयोग का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ दो, जंगल में बैठ करके ध्यान मग्न हो जाए, कर्म को का त्याग कर लो, नहीं। राजयोग माना कर्म योग भी है। कर्म करते समय भी आप योग युक्त कर्म जब करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। योग युक्त कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म करते समय आप आंखों को बंद तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए बैठ करके जब आप मेडिटेशन करते हैं या प्रैक्टिस हो जाए ओपन आई के साथ, आंख खुला रख करके जब आप मेडिटेशन करना सीख जाते हैं तो फिर कर्म योग करना भी इजी हो जाता है। तो इसीलिए ओपन आई मेडिटेशन हमेशा हम यहाँ रेकमेंड करते हैं। ओपन आई मेडिटेशन का इसका मतलब है कभी बंद नहीं करना, ऐसी बात नहीं। कभी कभी आपको कंफर्टेबल लगता है कि आंख बंद करना है मुझे, तो आंख बंद कर लीजिए, लेकिन सजेशन ये रहेगा कि लंबे काल तक आंखों को बंद ना रखें। हाँ, बंद करना है बंद करिए, कुछ सेकंड्स के लिए बंद करिए, फिर आप उसको खोल सकते। तो लंबे काल तक आंखों को बंद नहीं रखना है। क्यों नहीं बंद रखना है? क्यों नहीं बंद रखना है? नींद आ जाएगी, एक तो नींद आ जाएगी, फिर दूसरी बात है जैसे आप ना कंपेयर करके देख सकते, जैसे ही आंख बंद किया तो मन बहुत इजी है इस हॉल से बाहर जाना, बहुत इजी है। जैसे ही आंख बंद करेंगे किसी ना किसी को याद करना, अपने घर जाना, जो भी जहां कनेक्शन है वहां मन को जाना बहुत इजी लगता है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं आंख बंद न रखे। हाँ, बहुत ही अनुभवी हो तो बीच बीच में बंद करे, वो अलग बात है, लेकिन पूरा मेडिटेशन के दौरान आंख बंद करके रख करे वो रेकमेंड हम यूजुअली नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर सोचना क्या है और फोकस क्या करना है? जैसे आंखों को तो हाफ ओपन रखना है, लेकिन हम कहते हैं कहीं कोई भी एक जगह पर आप आंखों को एक स्टेबलाइज कर लीजिए। एक जगह पर आप आंखों को जैसे एक वहां एकाग्र नहीं करना है, स्टेबल करना है बस, क्योंकि पूरा मन का फोकस अंदर के तरफ जाएगा, लेकिन आंख जब स्थिर रहेगा तो फिर एकाग्र करना बहुत इजी हो जाता है। अगर स्थिर नहीं रखेंगे आंखों को, इधर उधर देखते रहेंगे, आंख भटक रहा है, इधर देख रहे उधर देख रहे इधर इधर देख रहे, तो आंख जब भटक रहा है तो फिर एकाग्र होना, कॉन्सेंट्रेट करना मन को मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी एक लेवल पर आंखों को स्थिर रख करके फिर मन को फोकस करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये है विधि। और सोचना क्या है? जैसे कमेंट्री में बताया जाता है, सबसे पहले स्थिति है विड्रॉ करना है कर्म इंद्रियों को, मन और बुद्धि को वातावरण से, अलग पूरी दुनिया से डिटैच करके। डिटैचमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि मन और बुद्धि भटक रहा है इधर उधर उधर उधर, पूरा डिटैच करके फिर फोकस करना आत्मा में, फोकस करके फिर आत्मा के गुण और शक्तियों के बारे में चिंतन और अनुभव करते हुए फिर परमात्मा के साथ कनेक्शन। तो यहां तीन शक्तियों को हम यूज करते हैं मेडिटेशन करते समय। एक है सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। विड्रॉ कर लेने के बाद मन और बुद्धि को, तो फिर क्या सोचना शुरू करते हैं? आत्मा के बारे में सोचेंगे कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति, जो भी पॉजिटिव थिंकिंग, स्वचिंतन जिसको हम कहते हैं, स्वचिंतन करना शुरू करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, या फिर हम कहेंगे श्रेष्ठ विचार, है ना, विचार मन को उसको इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स करना शुरू करते हैं। वो पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है विजुलाइज करना। विजुलाइज माना जैसे यहां बैठे बैठे कहे कि आप अपने आप को सागर किनारा देखिए, अब सागर किनारे पहुंच गए और फिर ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आप विजुलाइज कर सकते हैं, राइट? यहां बैठे बैठे बुद्धि की शक्ति है वो। बुद्धि को तीसरा आंख कहते, थर्ड आई कहते हैं बुद्धि को, है ना। उस थर्ड आई से हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी विजुलाइज कर सकते हैं। हर एक के अंदर ये ताकत है। मेडिटेशन में भी इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? जब मैं कहती हूं मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूं, तो इस तीसरे आंख से आप देखें, सचमुच मैं यहां आत्मा चमक रही हूं, दिखाई देना चाहिए। ये स्थूल आंख खुला है लेकिन फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है मैं आत्मा यहां बैठ करके चमक रही हूं। ये टेक्निक है। ये तीसरे आंख से देख रहे, बुद्धि के आंख से आप देख रहे हैं कि मैं आत्मा यहां चमक रही हूं। और तीसरी बात है महसूस करना, फील करना। जैसे अगर आपको कहे आप विजुलाइज करें, आपके हाथ में एक नींबू है, भले आप आंख बंद कर सकते हैं क्योंकि आपको अगर मना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आपके हाथ में एक नींबू है, कटा हुआ है, हाफ नींबू है, आप उसको चूस रहे हैं, वो नींबू को चूस रहे हैं, क्या हुआ? कुछ हुआ? यहां मुंह में कुछ हुआ? क्या हुआ? सलाइवा आया ना? आया ना? भले आपने नींबू नहीं खाई, नींबू नहीं खाई, केवल विजुलाइज किया कि मैं नींबू चूस रही हूं, चूस रहा हूं, तो ये बॉडी रिएक्ट कर रहा है। तो दिस इज द पावर ऑफ विजुलाइजेशन एंड फीलिंग, है ना, ये रिएक्ट होता है। तो इसीलिए ये तीन शक्तियों को हम यूज करते हुए मेडिटेशन करेंगे। एक है स्वचिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, दूसरा है विजुलाइजेशन, चित्रीकरण, स्पष्ट चित्रीकरण करना है, क्लियर विजुलाइजेशन करना चाहिए, और तीसरा है महसूस करना, फील करना। अगर मैं कहती हूं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, केवल सोच नहीं रही हूं, सोच भी रही हूं, विजुलाइज भी कर रही हूं और उसको महसूस भी कर रही हूं, ठीक है। ये तीनों को साथ साथ करते जाएंगे तो वो मेडिटेशन फिर बहुत इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो चलिए मेडिटेशन करने से पहले कुछ अगर प्रश्न हो तो पूछ लेते हैं। माइक दे देंगे भाई, कोई है पीछे? हाँ, मेडिटेशन के कनेक्टेड अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो पूछ लीजिए। कोई नजर नहीं आ रहा है बैक स्टेज पे, ऐसे पूछ लीजिए आवाज से। वही सबसे पहले स्टेज वही कहा ना, एक प्रश्न था कि अगर वर्तमान के बातों में उलझी हुई है मन तो फिर बाहर कैसे आए, तो विड्रॉ करना पड़ेगा ना। विड्रॉ करने के लिए मन को समझा दीजिए कि रुको, उस इश्यू को मैं बाद में डील करूंगी, तो अभी मुझे मेडिटेशन करना है ना। मन को कैसे बच्चे की तरह उसके साथ डील करना होगा, जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसको समझाना पड़ेगा मन को, ठीक है रुको थोड़ी देर, हाँ मैं आती हूं वहां, लेकिन अभी कुछ मिनटों के लिए मुझे मेडिटेशन करना है ना, फुल स्टॉप लगा करके, शिफ्ट करके फिर ऐसे कर सकते, ठीक है। हाँ जी, बीच बीच में कनेक्शन टूटता है तो इसके लिए लगातार आपके लिए प्लान होना चाहिए। माना अगर आप सोचिए कि चलो मैं 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में बैठूंगी मेडिटेशन में, एक कॉर्डलेस माइक दे देंगे संजय भाई, आप इनिशियली स्टार्टिंग में आप लंबे काल तक बैठने का अभ्यास ना करें। आधा घंटे अगर बैठेंगे तो आधा घंटा बैठना मुश्किल हो जाएगा। मन फिजिकली आप बैठे हैं लेकिन मेंटली आप घूम रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो इसलिए शॉर्ट पीरियड, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट स्टार्टिंग में ये अभ्यास आप करेंगे। आप प्लान लेकर के बैठेंगे, 5 मिनट मुझे मेडिटेशन में बैठना है, 5 मिनट में कि मुझे क्या अनुभव करना है, तो ये सोच करके बैठेंगे तो वो लगातार फिर हो रहेगा, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना अभी तक, प्रैक्टिस नहीं है। जैसे सालों सालों से मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, बचपन से एक्सरसाइज नहीं किया, इमीडिएटली मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूंगी तो वो नहीं, इतना स्टैमिना तो नहीं है ना, एक ही बार में एक घंटा में एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, है ना, वो शरीर में ताकत नहीं रहेगा। तो ऐसे मेडिटेशन में ऐसा है, थोड़ा स्मॉल पैकेट्स, इसलिए कहते हैं 5 मिनट 10 मिनट में शुरू करें, बीच बीच में करते रहे, 2 घंटे में एक बार या फिर दिन में 3 बार, 3 में 4 बार, ऐसे बीच बीच में करें तो दैट इज मोर इफेक्टिव। लंबे काल तक बैठने का वो नहीं करें, ठीक है। हाँ जी, कोई काम कर रहे हो तो, हाँ जब काम कर रहे होते तो काम भूल जाता है, लेकिन मेडिटेशन करते बैठते हैं ना तो वो काम याद आता है, अरे अरे ऐसा करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये छूट गया, है ना, वो प्रश्न है ना, क्यों होता है, क्योंकि मेडिटेशन कर जब मैं बैठते हैं ना मेडिटेशन में मन शांत होने लगता है, जब मन शांत हो जाए तो वो पीछे जो अंडर लेयर है ना, अंडर करेंट्स, वो ऊपर आता है, तो वो तो नेचुरल है। तो लेकिन फिर उसको समझा दीजिए, ठीक है 10 मिनट के बाद उसको मैं देखूंगी, 15 मिनट के बाद देखूंगी, भटकता है, नींद आती है। नींद इसीलिए आती है क्योंकि आप एंजॉय नहीं कर रहे, आप मूवी देखते नींद कर लेंगे, है ना, जब जहां एंजॉयमेंट है वहां नींद नहीं आएगी, है ना। तो यहां नींद क्यों आती है, तो बोर फील होता है, और दूसरी बात है शांत बॉडी, मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, मन शांत हो रहा है, तो फिर नेचुरल है वो नींद में चला जाना। तो लेकिन फिर भी उसको अलर्ट रखना पड़ेगा आपको, कुछ सोच करके, कुछ अनुभव करके, कुछ ये करके, हाँ हाँ भटकता है मन, इसलिए भटकता है क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया ना आपने, कंट्रोल करने का अभ्यास ही नहीं किया। अगर मान लीजिए बच्चे हैं, बच्चों को 18 साल 20 साल तक आपने कंट्रोल ही नहीं किया, 20 साल के बाद आप ठोकना शुरू करेंगे, ये नहीं करो वो नहीं करो, सुनेंगे आपकी बात नहीं ना, मन को भी छोड़ दिया था हमने बचपन से, तुम कहां जाओ भागो जाओ जाओ। अभी मैं मेडिटेशन करते समय थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं सुनता है ना। तो इसीलिए थोड़ा अभ्यास, जितना अभ्यास करते जाएंगे, मन के साथ बात करने की आदत डालिए, अपने आप के साथ बात करने की आदत डालिए, अपने आप के साथ, माना कोई भी विचार आ रहे हैं इधर की उधर की, ये विचार क्यों आ रहे हैं, है ना, तो वो जो एनालाइज करना शुरू करेंगे ना तो समझ में आता है। अपने आप के साथ अपने मन को एनालाइज करना शुरू करते हैं तो फिर धीरे 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 आप अपने मन को समझना शुरू कर लेते हैं। यही कहते हैं कि अपने आप को समझना, अपने आप को समझना माने अपने मन को समझना। पहले बंद आंखों से देखना है आपको, देखने से क्या होगा। अच्छा ये प्रश्न है, प्रकाश ज्योति बिंदु परमात्मा को बंद आंखों से कब हम महसूस कर सकते हैं, है ना, ये प्रश्न है। आप कभी भी महसूस कर सकते हैं, खुले आंखों से भी महसूस कर सकते हैं और बंद आंखों से भी महसूस करते हैं, परमात्मा केवल एक संकल्प की दूरी पर है, ठीक है, बहुत दूर नहीं है, केवल एक संकल्प की दूरी पर है। केवल मैंने याद किया परमात्मा, कोई बाबा, हम शिव बाबा कहते हैं, पिता कहते हैं, जो भी कहते हैं, प्यार से याद किया, कनेक्शन जुट गया, है ना। इन देखने की बात नहीं है, महसूस करने की बात है। परमात्मा कोई देखने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। उनके प्यार को, उनकी शक्तियों को महसूस करने की बात है। लास्ट प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम मेडिटेशन करने बैठते हैं।
ओम शांति। मैंने एक बार अपने मन से लड़ाई की और मैं बहुत देर तक बैठा ऐसे ध्यान में, क्योंकि जो लाइट बोलते हैं दिखती है, तो बहुत समय तो नहीं दिखी, लेकिन एक बार महसूस जरूर हुआ कि अंदर मेरे कुछ प्रकाश है। ये मैंने जबरदस्ती मन को बैठा के देखा।
ठीक है, अच्छी
तो
बात।
एक बार मेरे को जरूर दर्शन हुए थे इसके।
महसूस जब करेंगे तो वो बहुत अच्छा अनुभव होगा। हाँ, वही मैंने समझाया था कि जो बाबा का चित्र यहाँ है ऊपर, जो लाइट है, वो आपको बहुत ऊपर हो जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल है तो केवल आपके आंखों को फिक्स करना है वहां। आपको ये नहीं वहां से आपको शक्ति आ रही है, नहीं, वहां से शक्ति नहीं आती है, वो तो स्थूल चीज है, वो लाइट है। वहां से स्थूल चीज से आपको कैसे शक्ति मिलेगी? शक्ति तो मिलेगी ऊपर से, है ना, शिवाबा से, ऊपर से। वहां देखने के लिए या कोई भी जगह पर फिक्स करने के लिए क्यों कहते हैं? केवल आंखों को स्थिर रखना है, बस इसीलिए। लेकिन फोकस पूरा अंदर और फिर ऊपर, ठीक है, ठीक है। वो सब बहुत विस्तार है, हाँ, उन सभी विस्तार में नहीं जाए, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम यहां कहते हैं सहज राजयोग, इजी, है ना, जो लेमैन भी, ऑर्डिनरी पर्सन भी बहुत इजीली वो समझ सकता है। पिंगला बाड़ी, इंगला बाड़ी, वो सब वो नहीं सोचिए। तो वो केवल आप सोचिए कि मैं एक आत्मा यहां विराजमान हूं, बस। वो एग्जैक्ट जगह वो सब नहीं सोचिए कि यहां ब्रेन के बीच में मैं आत्मा बैठी हुई हूं, वो आत्मा के गुण, क्वालिटी, सब कुछ वो अनुभव करते हुए फिर ऊपर कनेक्ट होना है। एग्जैक्ट लोकेशन, यहां बैठे, वहां बैठे, उस डिटेल में नहीं जाइए। ठीक है, यहां बैठी हूं, बस स्कल के बीच में, ब्रेन के बीच में, बस। क्योंकि वहां कोई तर्क वो प्रूव नहीं कर सकते, है ना, यहां एग्जैक्टली बैठी है, वहां बैठी, तो हूं तो सही ना वहां कहीं, हा? तो वो वहां बैठ करके फिर मेन बात है अनुभव की, मैं आत्मा, आत्मा अनुभूति की बात है, परमात्मा अनुभूति की बात है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये तो लेट हो रहा है। अनुभूति, फीलिंग, महसूस करना। मेडिटेशन करते समय तीन बातों का ध्यान रखना है, एक है स्वचिंतन, दूसरा है विजुअलाइजेशन और तीसरा है महसूस करना, फील करना। ठीक है, चलिए सीधा बैठ जाए। दोनों पैर जमीन पर रखें, अलग अलग, क्रॉस नहीं करिए। आराम से लेकिन अलर्ट। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे आप सोचते जाएंगे, विजुलाइज करते जाएंगे और महसूस करते जाएंगे। आसपास के वातावरण से, लोगों से, आवाजों से, अपने मन और बुद्धि को विड्रॉ करें अंदर के तरफ ले चलते हैं अंतर जगत की यात्रा में मन के स्क्रीन पर बहुत सारी बातें आ रही है और जा रही है डिटैच्ड ऑब्जर्वर के रूप में उनको देखते जाएं रिएक्ट ना करें आएंगे जाएंगे धीरे धीरे विचारों की गति कम होता जा रहा है अभी अपने आप को देखने की कोशिश करें भ्रुकुटी के मध्य में एक चमकता हुआ अजब सितारा अति सूक्ष्म ज्योति हूं मुझ ज्योति से प्रकाश की किरणें फैल रही है मैं ज्योति आत्मा चैतन्य हूं लिविंग हूं इस शरीर को जीवन प्रदान करने वाली मैं आत्मा हूं ये शरीर जड़ है लेकिन मैं आत्मा चैतन्य हूं ये शरीर केवल मेरा वस्त्र है जिसको धारण कर मैं इस कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रही हूं कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर इन आंखों की खिड़कियों के द्वारा बाहर की जगत को देख रही हूं। आंख बंद करने से मुझ आत्मा का कनेक्शन बाहर के जगत के साथ बंद हो जाता है। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर कानून द्वारा सुन रही हूं। कान केवल मेरा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन सुनने वाली मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर मुख द्वारा बोल रही हूं। मुख केवल मेरा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन बोलने वाली मैं आत्मा हूं। अलग अलग कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं आत्मा अलग अलग कर्म कर रही हूं। मैं आत्मा कंट्रोलर हूं। करण करावन हार हूं, करने वाली हूं। मास्टर हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मुझ आत्मा का मृत्यु नहीं है। जैसे ही मैं आत्मा इस शरीर से निकलती हूं, इस शरीर की मृत्यु हो जाती, लेकिन मैं आत्मा अमर हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं। मुझ आत्मा का निजी गुण शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा से निकल रही है। महसूस करें गहन शांति की। शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा से निकलकर पूरे शरीर में फैल रहा है। मेरे रोम रोम रग रग मेरा शांत और शीतल होता जा रहा है। शांति की शक्ति को पूरे शरीर में महसूस करें। धीरे धीरे मैं अपने मन और बुद्धि के द्वारा मुझ आत्मा के निजी घर परम धाम में पहुंचती हूं, जहां लाल प्रकाशित दुनिया है, जो मेरा घर सो मेरे पिता परमात्मा का घर है। वहां मेरे पिता परमात्मा को देखती हूँ, मेरे जैसे आकार में ज्योति बिंदु है, लेकिन प्रकाश में अथाह है। बेहद है, वे मुझ आत्मा के पिता है। मेरे पिता शिव बाबा शांति का सागर है। मैं आत्मा उनके अति प्रिय संतान शांत स्वरूप हूं। परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा उनके जैसी बनती जा रही हूं। शुद्ध प्रबुद्ध मेरे पिता परमात्मा करुणा का सागर है, दया का सागर है, प्रेम का सागर है। मैं आत्मा उनके सानिध्य में अपने सब चिंताएं उनको देती जा रही हूं। मेरे दिल का बोझ सब कुछ हल्का होता जा रहा है। मुझ आत्मा के अंदर पुनः उस शक्ति का संचार होता जा रहा है। मुझे विश्वास है कि परमात्मा हमेशा मेरे साथी रहेंगे। वो मेरे माता पिता टीचर सद्गुरु गाइड स्वामी सखा सब कुछ है। परमात्मा के अंगुली पकड़कर उनके गाइडेंस में मैं चलती जा रही हूं। परमात्मा के छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा सुरक्षित हूं, सशक्त हूं, निश्चिंत हूं। ये संबंध ऐसा संबंध है जो अविनाशी है, जन्म जन्मांतर चलने वाले ये संबंध है। मैं आत्मा इस बात को भूल गई थी, फिर से परमात्मा के सानिध्य में अपने आप को पाकर धन्य धन्य महसूस कर रही हूं। धीरे धीरे वापस अपने कर्म क्षेत्र पर आकर परमात्मा के को साथ रखते हुए मैं कर्म करती चलूं, निरंतर परमात्मा से ले रही हूं और संसार को दे रही हूं। परमात्मा से शांति, आनंद, शक्ति, प्रेम, ज्ञान, सर्व गुणों को, सर्व शक्तियों को लेते हुए संसार को दे रही हूं। ओम